तो पिछली बार जब भूमिका की चर्चा हो रही थी तो काफी विस्तार में अन्याभिलाषिता शून्यम इस श्लोक का विश्लेषण किया गया था और उसके बाद सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम इस श्लोक का भी संक्षिप्त में विश्लेषण किया गया था। और आज से हम भक्ति रसामृत सिंधु की भूमिका समाप्त करने के बाद प्रथम अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो आप सबने पढ़ लिया है ना? पढ़ के आए हैं आप प्रथम अध्याय कम से कम आधा। तत्परत्वेन का अर्थ थोड़ा कम कीजिए वॉल्यूम थोड़ा। भक्ति भाव से श्री कृष्ण को परम उद्देश्य मानते हुए भक्ति भाव से उनकी सेवा करना, तत्परत्वेन भक्ति भाव से जुड़ना।
एक वो अन्य अभिलाषिता शून्य अभिलाषा और अभिलाषिता वाला उसमें जो निर्विशेष ज्ञान अभिलाषा ना होना
वो अलग है, वो ज्ञान कर्मादिनावृतम में आ गया। अन्याभिलाषिता शून्यम अभिलाषा और अभिलाषिता इस बात का प्रश्न है ना आपका। पिछली बार किसी ने प्रश्न पूछा था, एक माताजी ने उत्तर दिया था, आप फिर से उत्तर दीजिए। अभी अभिलाषा और अभिलाषिता शुद्ध भक्त नहीं माना जाता, भक्त माना जा सकता है लेकिन शुद्ध भक्त।
तो आपातकालीन स्थिति में हम भगवान को पुकार सकते हैं, भक्ति के विरुद्ध नहीं, भक्ति के भीतर ही होगा, बल्कि भक्ति का आभूषण माना जा सकता है उसको। तो इसलिए अभिलाषा यूज नहीं किया। अभिलाषिता का मतलब है कि इंद्रिय दृष्टि से संबंधित कोई आशा नहीं करनी। और प्रभु जी एक मुझे कंफ्यूजन था, जैसे भक्त वो एक अभिलाषा करता है कि जैसे कोई मंदिर का निर्माण करना चाहता है कि मुझे जमीन मिल जाए जिसमें मंदिर का निर्माण कर सकते, तो इस तरह की अभिलाषा भी भगवान से कर सकते हैं ऐसे। तो मतलब वो इसमें कोई इसमें भी तो शुद्ध भक्त का ही लक्षण हुआ,
क्योंकि ये तो भगवान से संबंधित है। जो इच्छा भगवान की सेवा के लिए की जाती है वो अवश्य शुद्ध भक्ति के क्षेत्र में है, परंतु भगवान की सेवा की इच्छा के साथ साथ उसमें हमारे भी कोई इच्छाओं की मिलावट अगर है तो फिर वो मिश्र है। अगर कोई सोचे कि मैं भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहता हूं और इससे भगवान की सेवा भी होगी साथ साथ मेरा भी नाम बहुत बड़ा हो जाएगा कि मैंने कितना बड़ा मंदिर बनाया भगवान के लिए, तो ठीक है सेवा तो करना चाहते हैं ये, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते हैं, भगवान के लिए ही बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने लिए भी कुछ इच्छा है कि मेरा भी कुछ बड़ा नाम हो जाए, मेरी भी प्रशंसा हो, प्रसिद्धि हो, लोग मेरा वाहवाह करें, तो ये मिश्र है। लेकिन शुद्ध भक्ति का सिद्धांत क्या है? अन्याभिलाषिता। ये जो प्रसिद्धि की इच्छा है ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है और ये सूक्ष्म है, बस इतना ही है। अभिलाषा मतलब कोई भी इच्छा, भौतिक इच्छा जो भगवान के लिए डायरेक्ट न हो, हमारे लिए जो इच्छा हो चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो वो अभिलाषा है। परंतु इस अभिलाषा में ऐसे भी इच्छाएं आती हैं जो जिनको अनुमति दी गई है शुद्ध भक्ति के क्षेत्र में, जैसे आपातकालीन स्थिति की अवस्थाएं। तो इसलिए अगर रूप गोस्वामी अभिलाषा शब्द का प्रयोग करते तो ऐसे जो इच्छाएं हैं जिनके लिए अनुमति दी गई है आपातकालीन स्थिति में ऐसे भगवान को पुकारना, तो वो नहीं आते इसमें। इसलिए ऐसे भक्त जैसे कि द्रौपदी, फिर उनको हम शुद्ध भक्त नहीं कह सकते थे। तो अन्याभिलाषिता प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि इसमें हाँ वो इच्छाएं हैं जो आपातकालीन स्थिति में किए जा सकते हैं, लेकिन अन्याभिलाषिता केवल उन इच्छाओं से संबंध रखता है जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो। ठीक है, नहीं ये एक शुद्ध अभिलाषा है, ये के लिए आध्यात्मिक अभिलाषा है, क्योंकि ये भगवान की सेवा से संबंधित है। क्योंकि विलास कुंज में वास करके करेंगे क्या, सेवा करेंगे, इसलिए इसको लालसा कहते हैं, सिद्धि लालसा, एक विशेष प्रकार की सिद्धि की लालसा जब हम करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि इसमें हमारे लिए कोई भौतिक इच्छा नहीं है, हमारे लिए हमारा कोई सूक्ष्म स्थूल स्वार्थ नहीं है इसमें। जब स्वार्थ आता है चाहे सूक्ष्म या स्थूल, तो फिर वो भौतिक इच्छा हो जाता है। अभिलाषिता का मतलब है भौतिक इच्छा करने की वृत्ति प्रवृत्ति। तो अन्य अभिलाषिता शून्य, अभिलाषिता मतलब भौतिक इच्छा करने की जो आदत हो जाती है या बार बार करने की जो एक वृत्ति हो जाती है, डिजायरनेस, डिजायर और डिजायरनेस, इच्छा हो सकती है कभी जो भगवान से संबंधित नहीं है, हमारी रक्षा से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हर रोज हमारे लिए इमरजेंसी आ रहा है जीवन में और हर रोज हम भगवान को पुकार रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है कि अभी थोड़ा स्पष्ट हो गया? हाँ परीक्षा। बात एक ही है, इच्छा भी है तो वही आती है, अभिलाषा है अवश्य, अभिलाषा तो इच्छा ही है ना, अभिलाषा मतलब इच्छा। तो व्यक्ति जब पुकारता है तो उसको प्रकट कराता है स्थूल रूप में अपने वाणी के माध्यम से, आखिर इच्छा तो है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, भगवान हमारी हर इच्छा को जानते हैं। इच्छा होती है, किस प्रकार की इच्छा होती है? केवल कृष्ण की सेवा, केवल कृष्ण की सेवा की इच्छा होती है। अन्याभिलाषिता शून्य, तो शून्य ये किससे संबंधित हम चर्चा कर रहे थे? अन्य से संबंधित, अभिलाषा से नहीं। अभिलाषा शून्य नहीं होनी चाहिए, भौतिक अभिलाषा शून्य होनी चाहिए, अर्थात अन्य अभिलाषा शून्य, अभिलाषिता मतलब भगवान की सेवा के अलावा जो भी इच्छाएं हैं वो शून्य होने चाहिए, ये तात्पर्य है। लेकिन एक सामान्य परिभाषा करनी है तो भगवान की इच्छा से अलग अगर कोई इच्छा है तो वो भौतिक इच्छा है, तो वो भगवान भक्ति नहीं कहलाता है। ठीक है ना, अभी भी कोई कंफ्यूजन? अभी आपको भक्ति रसामृत सिंधु के भूमिका के ऊपर क्लास देना पड़े तो आप दे पाएंगे ना? इस बात को आप स्पष्ट कर पाएंगे? یہ پوائنٹس بہت مہتوپورن ہیں، حالانکہ سوکشم پوائنٹ ہیں سارے، لیکن ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو آگے ہماری بھکتی بہت اچھی طرح سے بڑھ سکتی ہے. تو پہلے ادھیائے میں اب شریل پربھوپاد شروع کرتے ہیں. آپ کی کتابوں کو آپ ساتھ میں کھول کے رکھ سکتے ہیں. شریل پربھوپاد جی شریمد بھاگوت کے ترتیہ اسکند کے 29ویں ادھیائے سے پرمان دے رہے ہیں. کپل دیو اپنی ماتا دیوہوتی کو جب اپدیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ شلوک کہتے ہیں. واسطو میں یہ شلوک ہے شریمد بھاگوت کے 12, 13 اور 14 شلوک، لیکن 12 کا کیول ایک لائن ہے، 13 ہے اور پھر 14 کا ایک لائن ہے. یہاں اس شلوک کو پربھوپاد جی نہیں کہہ رہے ہیں، کیول شلوک کا انواد دیا ہے پربھوپاد جی نے پستک میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میں سے کوئی یہ سندر شلوک پڑھنا چاہیں گے؟ ہاں پڑھیے.
اویہتا پروشوتم شالوک سراشی سامیپ شاروپی ابیوت دیمان گنتی بنا مت سیون جنا شیو بھکت یوگاخیا آنتکت ادارت
آتیک تو انواد کوئی پڑھیے کتاب میں سے، اور کوئی پڑھیں گے انواد.
شری کپل دیو نے شریمد بھاگوت میں اپنی ماتا کو اپدیش دیتے ہوئے شدھ بھکتی کے نملک لکشن بتائے ہیں. اے ماتا، جو میرے شدھ بھکت ہیں اور جنہیں بھوتک لابھ یا دارشنک چنتن کی کوئی کامنا نہیں ہے، ان کے من میری سیوا میں اتنے تلین رہتے ہیں کہ وہ مجھ میں اس سیوا میں تلین رہنے کے اتریکت اور کچھ نہیں مانگنا چاہتے، یہاں تک کہ وہ میرے دھام میں میرے ساتھ رہنے کی بھی یاچنا نہیں کرتے. مکتی پانچ پرکار کی.
نہیں بس بس، یہ انواد ہو گیا یہ شلوک کا. تو یہاں جو اوپر شلوک لکھا ہے اس کا انواد یہاں پربھوپاد جی نے دیا ہے. اب آئیے یہ شلوک کا وشلیشن کرتے ہیں. اہیتکی اور اویوہتا، یہ دو جو شبد ہیں یہاں پر. اہیتکی کا مطلب کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ بنا کسی ہیتو کے. کس طرح کا ہیتو نہیں ہونا چاہیے؟ بھوتک ہیتو. تو جب بنا کسی ہیتو کے یہاں کہتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بنا کسی بھوتک ہیتو کے. آدھیاتمک ہیتو تو ہے ہی، بھگوان کی سیوا کرنا، بھگوان کو پرسن کرنا، بھگوان کو آنند پردان کرنا، یہ ہیتو ہیں سارے پرامانک ہیں. تو جب یہاں کہا جاتا ہے کہ اہیتکی، بنا کوئی بھوتک ہیتو کے. دوسرا شبد ہے اویوہتا. اویوہتا کا مطلب کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ بنا کوئی رکاوٹ کے. وشیش کر کے اہیتی کے شبد سے آپ کو اور کوئی شلوک یاد آتا ہے شریمد بھاگوت کا؟ ہاں کون سا شلوک ہے وہ؟ ہاں کون سا شلوک؟ اس کے پہلے یہ آپ نے دوسرا بھاگ بتایا شلوک کا. پہلا بھاگ کون سا ہے؟ ہاں بولیے پورا شلوک بولیے.
سوئی پنسام پرو دھرمو یتو بھکتیر ادھوکشجے اہیتکی پرتیہتا ییاتما سپرسیدتی.
اس کا ارتھ بتائیے. ایک ماتا جی آئی ہیں، ذرا دروازہ کوئی کھولیں گے. ہاں اس کا مطلب بتائیے. شلوک تو آپ سب کو معلوم ہے، ابھی ارتھ بھی بتائیے. पुंसाम सवई पुंस परो धर्मो परह धर्म पुंसाम मनुष्यों के लिए मनुष्यों सर्व समस्त मनुष्यों के लिए सबसे ऊंचा धर्म क्या है इसकी परिभाषा उस श्लोक में की गई है क्या है बताइए सवै पुंसाम परो धर्मो यतः भक्ति ही अधोक्षजे तो जो मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ धर्म है वो क्या है भक्ति है किनके प्रति भक्ति अधोक्षज अधोक्षज कौन है भगवान कृष्ण अधोक्षज का मतलब क्या है इसका विभाजन कीजिए अधोक्षज क्या है मतलब हाँ विश्लेषण कीजिए जैसे हमने अन्य अभिलाषिता शून्यम का विश्लेषण किया ना अन्य अभिलाषिता शून्यम ऐसे आप बताइए जिसका पतन नहीं होता ठीक है और कोई मतलब अधः अक्ष ज ज मतलब ना 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 अक्ष मतलब क्या है आंख या इंद्रियां ठीक है ना हमारी इंद्रियों से जो अनुभव नहीं किए जा सकते स्थूल इंद्रियों से जो हमारे इंद्रियों के परे हैं जिनको भौतिक आंखों से देख नहीं सकते भौतिक कानों से सुन नहीं सकते जो हमारे भौतिक इंद्रियों के परे हैं वो है अधोक्षज तो फिर भगवान को हम बिल्कुल देख नहीं सकते देख सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियों से अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः इसका क्या मतलब है ग्राह्यम इंद्रियै हमारे ग्राह्य या स्थूल इंद्रियों से भौतिक इंद्रियों से भगवान का अनुभव नहीं कर सकते अगर जानना है तो हमारे आध्यात्मिक इंद्रियों से आत्मा की इंद्रियों से हम जान सकते हैं तो आत्मा की इंद्रियों को जागृत कैसे करना है पुनः अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेव उन्मुखे ही जिह्वा आदो जब भगवान की सेवा करेंगे जैसे कि भगवान का नाम लेना आदि तो फिर स्वयं एव स्फुरत्युदः इसकी स्फूर्ति हो जाती है हृदय में तो इस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है भगवान का अनुभव किया जा सकता है हमारे दिव्य इंद्रियों से तो इसलिए भगवान की भक्ति की परिभाषा यहां की गई है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अधोक्षज अध अक्ष ज जो हमारे इंद्रियों के भौतिक इंद्रियों के परे हैं ठीक है और आगे क्या है यतः भक्ति अधोक्षजे फिर अहेतुकी अप्रतिहता यही बात तो अहेतुकी यही यहां पे भी इस्तेमाल किया गया है अप्रतिहता वहां अप्रतिहता है यहां अव्यवहिता है मतलब वही है जो बिना रुकावट के किया जाता है इसका मतलब है कि भक्ति में रविवार की छुट्टी नहीं है दिवाली की छुट्टी नहीं है ठंडी या गर्मी की छुट्टी नहीं है 24 घंटे 365 दिन भगवान की भक्ति इसे भक्ति कहते हैं और ऐसे भक्ति करने मात्र से क्या होगा आखिरी लाइन क्या था उस श्लोक का यह आत्मा सुप्रसिद्धति मतलब आत्मा संतुष्ट होती है अगर आत्मा को संतुष्ट करना है
तो एकमात्र कृष्ण भक्ति का पथ बतलाया गया है। और किस प्रकार की भक्ति, जो अहेतुकी है, अव्यवहिता या अप्रतिहता है, जो बिना कोई भौतिक हेतु के किया जाता है और जिसमें कोई रुकावट नहीं होती है। तो ये भक्ति की परिभाषा भागवत में दी गई है और यहाँ पे कपिल देव उसी बात की पुष्टि करते हैं और कहते हैं अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। तो वहां ये तो भक्तिर अधोक्षजे कहा गया था, यहाँ या भक्ति ही पुरुषोत्तमे कहा गया है। तो पुरुषोत्तम किन का नाम है? हाँ, तो इसका विश्लेषण कीजिए। पुरुष और उत्तम, उत्तम का विश्लेषण कीजिए। जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं, तो बताइए कैसे? उत्तम, जो तम या अंधकार से परे हैं और हमें भी परे बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो है उत्तम। तो उत्तम लोगों में से उत्तम को ये भी कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचे। उत्तम श्लोक, ये भी भगवान का नाम है ना। तो ऐसे पुरुष उत्तम, भगवान पुरुष हैं और उत्तम पुरुष हैं, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम। या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। और फिर सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम, ये पांच चीजें क्या हैं? पांच प्रकार की मुक्तियां हैं। अच्छा, पहले क्या है बताइए? सालोक्य का मतलब क्या है? भगवान के लोक में निवास करना। जैसे वैकुंठ लोक में अनंत कोटि, अनगिनत वैकुंठ लोक हैं, और हरेक वैकुंठ लोक के ऊपर भगवान का एक चतुर्भुज रूप निवास करता है और वो प्रमुख रूप हैं उस लोक के लिए। जैसे जनार्दन लोक, त्रिविक्रम लोक, उपेंद्र लोक, वामन लोक, ऐसे अनगिनत लोक हैं। तो ऐसे ही एक लोक पे निवास करना, भगवान के एक लोक पे, जनार्दन लोक हो, त्रिविक्रम लोक हो, तो ये एक प्रकार की मुक्ति है, जिसको सालोक्य कहते हैं। दूसरी मुक्ति कौन सी है? सार्ष्टि। सार्ष्टि का मतलब बताइए। चाहना, प्राप्त करना, क्योंकि ये एक मुक्ति है ना। तो मुक्ति जब मिल जाती है इस प्रकार की, तो भक्त को भगवान के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से अगर कोई करोड़पति व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ा बंगला है, महल जैसे है, और वो आदमी तो महल के अंदर रह रहा है, लेकिन उसके साथ महल में और कौन रह रहा है? नौकर भी रह रहे हैं ना। उसके नौकर भी तो कहेंगे मैं महल में रहता हूं, वो तो गलत नहीं होंगे, सही बोल रहे हैं ना, वो भी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो उसी कमरे में, उसी ऐश्वर्यशाली वातावरण में निवास करते हैं। तो उसी प्रकार से भक्त को भी भगवान के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, इसको कहते हैं सार्ष्टि मुक्ति। और तीसरा क्या है बताइए? सामीप्य। सामीप्य का मतलब बताइए। ये शब्द कौन से शब्द से आता है? समीप। समीप मतलब निकट। तो भगवान के निकट होना मतलब भगवान का एक पार्षद बनना। कौन होता है निकट भगवान का? उनका पार्षद ही होता है। तो भगवान का एक पार्षद बनना, एसोसिएट बन जाना, तो यह है सामीप्य मुक्ति। और चौथी कौन सी है? सारूप्य। इसका मतलब क्या है? भगवान के समान रूप होना, सारूप्य। तो भगवान के जैसे चतुर्भुज रूप हैं, उसी प्रकार से वैकुंठ लोक में भी भगवान के भक्तों के रूप होते हैं, चतुर्भुज रूप, उनके जैसा ही उनके शरीर की कांति भी वैसे होती है, दिखने में भी वो बिल्कुल वैसे लगते हैं। आपने भागवत के छठे स्कंध में अजामिल की कथा के दौरान जो तस्वीर बनाई गई है भागवत के किताब में प्रभुपाद जी की, उसको देखा है ना आपने? आपको याद है वो चित्र? अजामिल लेटे हुए हैं और यमदूत आ रहे हैं, बड़े दिखने में भयानक हैं, और उनको रोक रहे हैं विष्णुदूत। तो विष्णुदूत कैसे दिखते हैं? बिल्कुल विष्णु की तरह ही दिखते हैं। तो विष्णु दूतों का स्वरूप जो होता है वो भी विष्णु के स्वरूप के समान ही होता है, बिल्कुल वैसा दिखते हैं। लेकिन फर्क क्या है बताइए, अंतर कैसे जान सकते हैं?
एक तो कौस्तुभ
मणि श्रीवास, बहुत अच्छा। तो यही दो चीजें हैं जिनसे हम विष्णु और विष्णु दूतों में अंतर समझ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जानेंगे कि ये विष्णु हैं या विष्णु के दूत हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो श्रीवत्स चिन्ह है जो कि किनका प्रतीक है? लक्ष्मी देवी का। लक्ष्मी देवी जो कि सदैव नारायण के चिन्ह पर निवास करती हैं। हाँ, मृगुपत भी है, वो भी है, लेकिन विशेष करके ये दो चीजें आभूषण माने जाते हैं ये दो। तो ये है सारूप्य, और आखिरी कौन सा है, अंतिम वाला मुक्ति? यहां कौन सा लिखा हुआ है? सारूप्य एकत्वम। तो संधि हो गई ना, य और ए का फिर ऐ हो गया, वो एकत्वम, सारूप्य एकत्वम है ना, एकत्वम। तो ऐ हो गया इसलिए कि य और ए, इसलिए ऐ हो गया एकत्वम। एकत्वम मतलब सायुज्य। ये किस प्रकार की मुक्ति है? निराकार में लीन हो जाना या भगवान के दिव्य शरीर में लीन हो जाना। एकत्व या सायुज्य की मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना और दूसरा भगवान के दिव्य शरीर में लीन होना। शिशुपाल की कौन सी हुई थी? शरीर में लीन होना। वैसे भक्त के लिए एकत्व या सायुज की मुक्ति घृणात्मक होती है, कैवल्यम नरक आयते, इसको कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। लेकिन इस एकत्व मुक्ति में भी जो भगवान के शरीर में लीन होना है, इसको और भी निम्न श्रेणी का माना जाता है। तो ये एकत्व की मुक्ति है। ये एकत्व या सायुज्य मुक्ति ये कौन चाहते हैं? निर्विशेषवादी, जो ज्ञानी होते हैं वो चाहते हैं। और ये प्रथम जो चार और मुक्तियां हैं वो कौन प्राप्त कर सकता है? केवल शुद्ध भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो अन्य चीजें हैं, ये चार मुक्तियां, ये केवल भक्त प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञानी लोग नहीं प्राप्त कर सकते। और जो एकत्व की मुक्ति है वो ज्ञानी प्राप्त करते हैं और भक्त कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो आगे क्या और लिखा है बताइए? सालोक्य सारष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम दीयमानम न गृहन्ति विना मत सेवनम जनाः। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? दीयमानम, ये पांच प्रकार की मुक्ति देने के लिए इच्छुक होते हैं, परंतु भक्त क्या करते हैं? न गृहन्ति, ग्रहण करना, न गृहन्ति, वो ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। हालांकि भगवान सामने से आके उनको दे रहे हैं कि ले लो, मैं पांचों प्रकार की मुक्तियां प्रदान कर रहा हूं, ले लो, लेकिन भक्त क्या कहता है? न गृहन्ति, नहीं चाहता हूं। विना मत सेवनम जनाह, जनाह मतलब यहां भक्त। तो अगर भक्त इनको स्वीकार भी करता है तो क्यों करता है? मत सेवनम, भगवान कहते हैं केवल मेरी सेवा के लिए स्वीकार करता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम कहते हैं कि भक्त भगवान के दैनिक इच्छा होने पर भी ये मुक्तियां नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों को मुक्ति नहीं मिलती है। अंततः भगवान के धाम में चले जाएंगे भक्त, परंतु महत्वपूर्ण शब्द क्या है, मत सेवनम। भक्त इन प्रकार इन मुक्तियों को तब स्वीकार करेगा जब भगवान की इच्छा है और भगवान की सेवा हो पाएगी उससे। अगर भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी तो वो मुक्ति नहीं चाहेगा, सालों की नहीं चाहेगा, साष्टी नहीं चाहेगा, और एकत्व की बात तो दूर ही है, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में तो सेवा कभी हो ही नहीं सकती। तो भक्त सायुज्य कभी नहीं चाहता है, और अन्य प्रकार के जो चार मुक्तियां हैं, केवल अगर सेवा के लिए वो अनुकूल हो, सेवा की वृद्धि हो, भगवान की प्रसन्नता हो उसमें, तभी वो स्वीकार करते हैं। अन्यथा वो भौतिक सृष्टि में हमेशा के लिए रहने के लिए भी तैयार होते हैं। ये है भक्तों की गुण। शिक्षाष्टक का कौन सा श्लोक है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। अब इसका मतलब कोई समझाइए, बताइए आप में से कोई।
मुझे ना धनम, ना मुझे धन चाहिए, ना जन्म, देहात्मा भान से जो जुड़े हुए जन है वे भी नहीं चाहिए, कविता अनिलाय नहीं चाहिए।
जन्म मतलब जन नहीं, जन्म ऊंचा जन्म, ऊंचा जन्म,
कविता
बर्थ,
कविता मैं मेरी उपस्थिति भी नहीं चाहता, जगदीश काम है,
मैं इन चीजों की, हे जगदीश, हे जगत के ईश्वर, मैं ऐसी कोई कामना नहीं करता। फिर
अगर
किस प्रकार की सेवा?
अहेतु
की सेवा। जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, हे ईश्वर, जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्म से भवता भक्ति ही अहेतु की त्वयी। जन्म जन्मांतर मुझे केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, बस। मुझे अन्य चीजें नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम इत्यादि, सब नहीं चाहिए मुझे, केवल आपकी अहितु की भक्ति चाहिए। और कब तक चाहिए? केवल इस जन्म तक चाहिए? नहीं, जन्म जन्मांतर मुझे ये चाहिए। इसका मतलब है कि भक्त मुक्ति भी नहीं मांग रहा है, भक्त गोलोक वृंदावन भी जाने के लिए मांग नहीं रहा है, वैकुंठ लोक जाने के लिए मांग नहीं रहा है। वो कहता है अगर आप मुझे यहां भौतिक जगत में भी हमेशा रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन केवल आपकी अहितु की सेवा का अवसर मुझे चाहिए। ऐसे हमारे वैष्णव भजनों में भी कई हैं ऐसे प्रार्थनाएं, आपने भी पढ़े होंगे भक्ति विनोद ठाकुर के प्रार्थनाएं वगैरह। हाँ बताइए। हाँ मतलब प्रसिद्धि, लोग हमारा वाहवाह करेंगे, है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की कामना करना कि हम एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे अनुयायी हो जाएंगे। जन्म मतलब ऊंचा जन्म लेना, ऊंचा कुल में हमारा जन्म होना, है ना, कोई अच्छे ब्राह्मण कुल में होना, कोई राजा के कुल में होना, ऐसे कुछ नहीं चाहिए। जिन चीजों को लोग चाहते हैं इस दुनिया में साधारण तौर से, ऐसी कोई भी चीज में नहीं चाहता। हाँ, अनुयायी भी नहीं चाहिए मुझे, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कविता जो प्रतिष्ठा है, अनुयायी है, ऐसे कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। तो ये भक्ति का भाव है। भक्ति के भाव में व्यक्ति जो है भौतिक, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं चाहता है, ठीक है। तो फिर ये भक्ति, शुद्ध भक्ति का सिद्धांत है कि भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, केवल क्या चाहता है, मत सेवनम। कपिल देव कहते हैं केवल मेरी सेवा ही चाहते हैं। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहरित। स एव तो इस चीज को क्या कहते हैं, इसे भक्ति योग कहते हैं। और केवल भक्ति योग नहीं, आत्यंतिक उदाहरित, भक्तियों का सबसे ऊंचा स्तर कहते हैं, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते अपने लिए भी कोई इच्छा करता है, वो भी भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी भक्ति आत्यंतिक नहीं कही जाती। आत्यंतिक मतलब सबसे ऊंचा स्तर, वो नहीं कहा जाता, ठीक है ना। तो इसी बात को यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो आगे चल के भी प्रभुपाद ने कहा ये पांच प्रकार के जो मुक्ति है, इनका वर्णन भी प्रभुपाद ने किया हुआ है, ठीक है। और आगे चल के अभी रूप गोस्वामी भक्ति के छह लक्षणों का वर्णन करने वाले हैं। अभी तक अन्याभिलाषिता शून्यम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम इन श्लोकों के बाद रूप गोस्वामी ने कपिल देव का ये श्लोक यहां पे दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भक्तों के माध्यम से भक्ति की, भक्ति का गुणगान हो। ये श्लोक में वास्तव में भक्त का गुणगान किया गया है, लेकिन भक्त का गुणगान करना मतलब भक्ति का गुणगान करना, क्योंकि करने वाला कौन है, भक्त ही है ना जो भक्ति करेगा। तो भक्ति के गुणगान में और भक्त के गुणगान में कोई अंतर नहीं है। तो आइए अभी रूप गोस्वामी आगे चल के बताते हैं कि छह प्रकार के लक्षण हैं शुद्ध भक्ति के, तो वो कौन से हैं, उत्तमा भक्ति के लक्षण। वो तो कागज जरा घुमाएंगे कोई, पांच प्रकार की मुक्तियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, आप बताइए। सबसे नीचे वाला कौन सा है ये बताइए आप। सायुज्य मुक्ति कोई नहीं चाहते हैं इसको, और बाकी जो भी चार हैं उनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। चारों ही अच्छे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे जो जो भगवान के समीप रहता है उसको सालोकी भी मिला है ना मुक्ति, वो उसी लोक में रहता है, सारूपी भी मिल गया है उसको, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे वर्ग हैं जो बिल्कुल अलग 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 हैं, ये सब एक जैसे हैं, एक समान है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये श्रेष्ठ है या ये नहीं है इत्यादि। गोलोक धाम में जाने से हम क्यों जाना चाहते हैं, गोलोक धाम क्यों जाना चाहते हैं, सेवा कर, मत सेवनम जनाः, था ना उस श्लोक में। अगर हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं तो केवल भगवान की सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं। अगर भगवान की इच्छा है कि हम यहीं पर रहें भौतिक जगत में और यहां उनका प्रचार करते रहें, तो फिर वही सही, क्योंकि भक्त को आसक्ति है भगवान की सेवा से, उसके निवास स्थान से नहीं, चाहे निवास स्थान भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, वो केवल सेवा चाहता है। ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है, वो अलग अलग, वहां सब भगवान की सेवा करते हैं, चारों मुक्तियों का लाभ मिल जाता है उधर। सामीप्य सारूप्य भले न हो, कि वो दिखने जैसे भगवान की तरह न हो गोलोक वृंदावन में, हो सकता है उनको और कोई रूप मिला हो, परंतु सारूप्य इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उनका रूप भी सच्चिदानंद है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो अभी रूप गोस्वामी ने जो वर्णन किए हुए छह लक्षण हैं, वो हैं, आप पढ़िए। क्लेशाग्नि नहीं, क्लेशाग्नि
समस्त प्रकार के क्लेशों से तुरंत राहत देती
है। दूसरा कोई बताइए, पढ़िए।
समस्त कल्याण का शुभारंभ करती है।
कौन करती है? भक्ति करती है, शुद्ध भक्ति। तीसरा कोई और पढ़िए।
शुद्ध भक्ति सबसे दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, सांद्रानंद विशेष
आनंद। नहीं, अच्छा, प्रभुपाद जी ने जो लिखे हैं हमने थोड़ा क्रम में परिवर्तन किया है, तीन नंबर पांच नंबर हमने एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है। तो तीन नंबर में यहां से पढ़िए।
मुक्ति के विचार को भी तुच्छ मानना।
कौन क्या?
मोक्ष
लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत, ये क्या है, क्या लक्षण है ये? मोक्ष को भी लघु कर देने वाला। लघु मतलब छोटा, और इसका विपरीत कौन सा शब्द है? लघु का ऑपोजिट क्या है? बृहत। बहुत अच्छा, बृहत मृदंग। लघु भागवतामृत, बृहत भागवतामृत, छोटा और बड़ा। तो मोक्ष को भी छोटा या तुच्छ करने वाला, करने वाली भक्ति। अच्छा, चौथा और कोई पढ़िए। चौथा लक्षण कौन सा है माताजी? में कोई पढ़िए। नहीं, यहां से पढ़िए। सांद्रानंद, सांद्रानंद, सांद्रा, सांद्रानंद विशेषात्मा। स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करती है, भौतिक सुख नहीं देती भक्ति, दिव्य आनंद प्रदान करती है। अच्छा, पांचवा और कोई पढ़िए। सुदुर्लभा, दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभा, और स्त्रीलिंग है ऐसे सुदुर्लभा आ क्या कहा गया है, केवल सुदुर्लभ नहीं। अच्छा, छठा कहिए। श्री कृष्ण आकर्षिणी, कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन। कृष्ण को आकृष्ट करना है तो हमारे धन से, हमारे सौंदर्य से, हमारे विद्वत्ता से, हमारे बल से, हमारे प्रसिद्धि से नहीं कर सकते। तो केवल एक साधन है और वो है शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति। तो ये छह लक्षण बताए हुए हैं रूप गोस्वामी ने। तो हम अभी इन लक्षणों का एक के बाद एक चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जैसे कि प्रभुपाद जी ने यहां पर किया हुआ है। अभी ये छह चीजें, ये छह लक्षण आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये छह लक्षण, हालांकि प्रभुपाद जी ने इन छह संस्कृत शब्द इस्तेमाल नहीं किए, केवल जो अर्थ है उसका बतलाया हुआ है, परंतु हमने यहां पर संस्कृत शब्द भी दिए हैं, तो आप इनको भी याद करिएगा। याद कर पाएंगे? अच्छा, हिंदी में है, हाँ हिंदी में है। तो ये हमारे भक्ति के का आधार है, बुनियाद है, फाउंडेशन, इसलिए इन सबको हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। हाँ, श्लोक भी है भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी के ग्रंथ में, लेकिन प्रभुपाद जी ने श्लोक श्लोक रूप में नहीं लिखा है, केवल अनुवाद रूप में और तात्पर्य रूप में लिखा है। जो मूल ग्रंथ है रूप गोस्वामी जी का, उसमें तो ये सारे श्लोक हैं, और एक ही श्लोक में उन्होंने सारे 6 लक्षणों का वर्णन किया है, उल्लेख किया है। आप अभी लिखना चाहते हैं या बाद में? बाद में लिख लीजिए, ठीक है। तो क्लास के बाद फिर ये घुमा लिया जाए तो फिर आप लिख सकते हैं उसको। अच्छा, अभी और कोई कागज घुमाएंगे आप? अब पहले क्लेश अग्नि, इसकी चर्चा करेंगे। क्लेश मतलब क्या है? क्लेश मतलब क्लेश, कष्ट, दुख, दुख, दुख या कष्ट, है ना, क्लेश। और ग्नि, ग्नि क्या है? घ्न, घ्न मतलब खत्म करना, नष्ट करना। तो घ्नि क्यों कहा गया, घ्न क्यों नहीं? स्त्रीलिंग है ना, भक्ति है, भक्ति के बारे में कहा गया है। तो घ्नि ज्यादातर जब स्त्रीलिंग होता है संस्कृत भाषा में आ या ई दीर्घ मात्रा होती है, तो आप समझ सकते हैं क्लेश अग्नि। तो जो भक्ति वो है जो कि हमारे समस्त क्लेशों का नाश करने वाली है, ठीक है। तो अभी क्लेशग्नि की चर्चा करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि भौतिक क्लेश के 3 कारण होते हैं, अविद्या, बीजम, पापम और फिर क्लेश। अविद्या मतलब आप समझ गए, इग्नोरेंस, अविद्या। ये मूल कारण है, अनादि काल से जीव अविद्या के, अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ है, और इसकी वजह से, इस अविद्या की वजह से बीजम, बीज किस चीज का बीज होता है, किस रूप में? इच्छाओं के रूप में, भौतिक इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, इनको बीजम कहते हैं। बीज संस्कृत में म हो जाता है ना, बीजम। तो अविद्या से उत्पन्न होते हैं तरह तरह के भौतिक इच्छाएं, कामनाएं। जब इच्छाएं होती हैं तो व्यक्ति क्या करता है, बताइए? पूर्ण करने का प्रयास करता है, स्वाभाविक है। किसी भी प्राणी के अंदर कोई इच्छा है तो स्वाभाविक रूप से हर प्राणी अपने इच्छा को तृप्त करने के लिए या पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है। तो क्योंकि ये ज्यादातर जो इच्छाएं होती हैं वो गलत इच्छाएं होती हैं, जैसे हम पहले दिन चर्चा कर रहे थे, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुराशया, ये वही अर्थमानिन है, दुराशा। ये गलत इच्छाएं होती हैं जो भोग की इच्छाएं होती हैं, तो व्यक्ति ऐसे कार्य कर लेता है जो पाप कहलाता है, पापम। तो गलत इच्छाओं को जब वो कार्य रूप में परिवर्तित करता है तो वो पाप कहलाता है। और पाप करने से फिर क्या होता है, क्यों होता है क्लेश, क्या मिलता है पाप करने से? फल मिलता है ना, पाप का फल। तो ये पाप का फल किस रूप में आता है? क्लेश रूप में। तो जो भी क्लेश, जो भी दुख कोई व्यक्ति अनुभव कर रहा है वो कहां से आ रहा है, वो क्या है? वो उसके पापों का फल है। अगर कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त कर रहा हो तो हमें जानना चाहिए कि ये दुख उसका प्रत्यक्ष पापों का फल है, ठीक है ना। और ये पापों का फल आया क्यों, अब पीछे जाइए, हम ऊपर से नीचे आए ना, अविद्या से क्लेश की ओर आए, अब क्लेश से वापस अविद्या की ओर जाते हैं। अब कोई व्यक्ति दुखी है, कोई गरीब है, भीख मांग रहा है, सड़क पे पड़ा हुआ है, अभी पीछे जाइए, तो उसको क्लेश हो रहा है। तो क्लेश क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये क्लेश उसके पापों का फल है। अब जब पापों का फल कहते हैं तो कोई पाप किया होगा उसने, इसलिए तो फल मिला। तो आगे जाइए पाप, और ये पाप जो है वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर कोई गलत इच्छा थी, बीज। और ये गलत इच्छा आई क्यों सर्वप्रथम, क्योंकि अज्ञान था उसके हृदय में, अविद्या थी। अगर वो अविद्या को नष्ट किया जाए, अगर उसको दिव्य ज्ञान दिया जाए, भक्ति का मार्ग बतलाया जाए, तो क्या होगा, भक्ति का ज्ञान देने से क्या होगा, उसको अविद्या नष्ट हो जाएगा। अविद्या नष्ट होने से क्या क्या नष्ट होगा, बीज नष्ट होगा। अच्छा, बीज नष्ट होगा तो क्या होगा, पाप नष्ट होगा, तब पाप करेगा नहीं वो आगे चल के भी। तो पाप नष्ट होने से क्या होगा, क्लेश नष्ट हो जाएगा, फिर जो सब है आप जैसे बन जाएंगे, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, बड़े सुखी हो जाएंगे, फिर जीवन में कभी दुख ही नहीं आएगा, आनंद ही आनंद में रहेंगे। तो ये बहुत सरल बात है, तो इसको हमें जान लेना चाहिए। तो लोग अक्सर समाज में अज्ञान की वजह से ये जानते नहीं है कि सच्चे कल्याण का कार्य क्या है। वो सोचते हैं अरे गरीब आदमी को कुछ भोजन दिला देना, या कोई ऐसे भौतिक कार्य करना, बीमार को दवाइयां दे देना, ये सब भक्ति है या ये सब आध्यात्मिक कार्य है। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं अन्य जगह कि ये सारे समाज के कल्याण के जो कार्य हैं, ये सब भौतिक स्तर पर स्थित हैं, और ये सारे कार्य इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि मूल रूप से उसको ये कष्ट क्यों हो रहा है। थोड़े समय के लिए हम कष्ट का या दुख का निवारण कर रहे हैं, लेकिन वो कष्ट हुआ क्यों हम गहराई में जाकर देखते नहीं है, उसके लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। अगर केवल हम इस प्रकार का समाज कल्याण कार्य करें तो, क्योंकि भूखे को आप भोजन खिलाएंगे तो 3 घंटे बाद फिर से वो भूखा हो जाएगा, आप बीमार आदमी को दवाइयां देंगे तो 1 महीने बाद फिर से बीमार हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को भोजन नहीं देना चाहिए या दवाइयां नहीं देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि केवल इतना करने से बात नहीं बनेगा, हमें क्या करना चाहिए, सबसे ऊंचा समाज के लिए कल्याण का कार्य है लोगों को भगवत भक्ति देना। भगवत भक्ति देने से अविद्या नष्ट, बीजम नष्ट, पापम नष्ट, क्लेश नष्ट, फिर सारा दुख जो है वो नष्ट हो जाएगा और आदमी दिव्य आनंद को प्राप्त करेगा, कभी भी ऐसी समस्याएं उसके जीवन में नहीं आएंगी, और अंततः वो भगवान के धाम में चले जाएगा शाश्वत जीवन और शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो अभी रूप गोस्वामी ने क्या किया है, इन 3 शब्दों का विश्लेषण किया है, अविद्या, बीजम और पापम। ठीक है, तो हम लोग भी अभी विश्लेषण करेंगे, हम शुरू करेंगे उल्टे, पाप से, फिर बीज और फिर अविद्या। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहां नीचे इस चार्ट में बताया हुआ है, अब पाप का विश्लेषण शुरू हो रहा है। ठीक है ना, याद रखिए भक्ति के 6 लक्षण, 6 लक्षणों में से पहला कौन सा था, क्लेशग्नि। तो क्लेशग्नि की चर्चा चल रही है, तो क्लेशग्नि में यह पहले बताया जा चुका है कि क्लेश उत्पन्न क्यों होता है, क्लेश के क्या कारण होते हैं। क्लेश के 3 कारण हैं, अविद्या, बीज और पाप। अभी ये तीनों का एक से एक के बाद एक विश्लेषण हो रहा है। तो सबसे पहले है पाप। तो पाप 2 प्रकार के होते हैं, पापों के फल के 2 प्रकार होते हैं। पाप करने से फल जो है सर्वप्रथम अप्रारब्ध रूप में उत्पन्न होता है और अप्रारब्ध फल जो है वो बाद में पक जाता है तो वो प्रारब्ध फल बन जाता है। तो अप्रारब्ध मतलब कच्चा, जो इस जीवन में प्रकट नहीं होगा, और प्रारब्ध मतलब वो पापों का फल या पुण्यों का फल जो इस जन्म में प्रकट होगा या हो रहा है। पाप करने से पाप का फल मिलता है, करेक्ट। तो पाप का फल सर्वप्रथम अप्रारब्ध रूप में प्रकट होता है, अप्रारब्ध और बाद में वो प्रारब्ध बन जाता है। तो प्रारब्ध फल क्या है? वो फल जो कि हमारे इस जीवन में प्रकट होता है, चाहे इस जीवन प्रकट हो गया होगा या हो रहा है, ये आने वाले इस जन्म में होगा, मतलब इसी जन्म में आने वाले दिनों में होगा, तो इसको प्रारब्ध कहते हैं। और जो पाप का फल अभी तक पका नहीं है, मतलब अभी तक जिसका अनुभव इस जन्म में नहीं होगा बल्कि आने वाले जन्मों में होगा, उसको अप्रारब्ध कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है ना बात? तो भी आप बताइए, क्लेशग्नि से शुरू कीजिए। अभी आप में से कोई समझाइए क्लेशग्नि क्या है, बताइए। हाँ,
क्लेशग्नि जो भक्ति है वो इस क्लेशों का नाश करने वाली है।
भक्ति समस्त क्लेशों का नाश करने वाली है। आगे कोई पॉइंट बताइए, आगे हमने क्या कहा था?
क्लेश के तीन प्रकार है, अविद्या मूल कारण है, और अविद्या से बीज उत्पन्न होता है।
बीज मतलब क्या?
बीज मतलब इच्छा है।
कौन सी इच्छा है?
भौतिक भोग की इच्छाएं करते हैं, और जो भौतिक इच्छाएं बीज के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इन भौतिक इच्छाओं को जब हम क्रिया में लाते हैं तो वो पाप बन जाता है, और उसके उस पाप का फल ही क्लेश है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कौन से विषय का? पाप का, जो कि दुख का तीसरा कारण बतलाया गया है। तो पाप के फल दो प्रकार के होते हैं, कौन से दो प्रकार? अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध फल क्या है?
प्रारब्ध फल जो है इस जीवन में पका हुआ फल जो इस जीवन में हम भोग रहे हैं या आगे भोगेंगे, और अप्रारब्ध जो इस जन्म में नहीं अभी तो अगले जन्म में
या पांच जन्म बाद, दस जन्म बाद, किसी भी जन्म में, लेकिन आने वाले जन्मों में जो अनुभव करेंगे वो अप्रारब्ध है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक चोर है, वो चोरी करता है, लेकिन अभी उसके लिए वो पकड़ा नहीं गया अभी तक, लेकिन पकड़ा जाएगा अवश्य। लेकिन जब तक वो पकड़ा गया नहीं है तो वो अप्रारब्ध के बराबर है। जब पकड़ा जाएगा तो उसको दंड मिलेगा, उस समय तो वो प्रारब्ध पक जाता है फल। जब उसने चोरी कर ली है अर्थात पाप कर लिया है, फल तो मिलना है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया इसलिए वो फल पका नहीं है। जैसे ही पकड़ा जाएगा उसको दंड मिलेगा, वो पक गया फल। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से ऐसे कोई फल होते हैं या पाप होते हैं जो इस समय हमारे इस जन्म में पक गए हैं। तो जो पापों के फल हम इस जन्म में अनुभव करते हैं उसको प्रारब्ध फल कहते हैं, और आने वाले जन्मों में जो हम अनुभव करेंगे उनको अप्रारब्ध फल कहते हैं। ठीक है? तो भक्ति अप्रारब्ध तथा प्रारब्ध दोनों का नाश करती है। तो अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि क्लेशग्नि कैसे क्लेश का नाश होता है, लेकिन क्लेश के तीन कारण हैं, उनमें से एक है पाप। तो यहां अब रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति समस्त पापों को नष्ट करती है। प्रारब्ध पाप हो या अप्रारब्ध पाप हो, ठीक है। और अब आगे चल के रूप गोस्वामी उदाहरण देंगे, इनके लिए प्रमाण देंगे कि कैसे अप्रारब्ध और प्रारब्ध दोनों नष्ट हो जाते हैं। आइए जरा घुमाएंगे आप कागज। दूसरी जगह यहां प्रभुपाद जी और उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसी को बहुत कोई बड़ी बीमारी है जो छूटती नहीं है, या किसी को बारंबार अदालत में जाना पड़ता है, अटका हुआ है बेचारा, दिन रात उसको जीवन भर अदालत में कटा रहा है अपना जीवन, तो ये सब हमारे पके हुए फल हैं, पापों के फल। कलयुग में सबसे बड़ा दंड किसी को देना है तो क्या करना चाहिए, अदालत में अटका दो उसको, है ना, बेचारा चक्कर काटता रहेगा, वकीलों के पीछे पीछे जाता रहेगा, ये कलयुग का सबसे बड़ा दंड है। ऐसे फिर 20 साल 25 साल बाद कोई निर्णय हो या ना हो, कोई हमें बता रहे थे कोई दिन पहले कि दिल्ली में कहीं कोई अदालत चला था, कोई केस चला था, तो वो आदमी तो बेचारा मर गया, केस सारे जीवन केस लड़ गया वो, लेकिन निर्णय कुछ हुआ नहीं। फिर उसका बेटा आया, वो भी बेचारा मर गया, और उसका बेटा जो है उसके समय वो केस जीत गया। दूसरा कोई हारा होगा तो बेचारे जिसने उसका प्रतिद्वंदी था उसके भी कोई बच्चे और उन बच्चों के बच्चे हुए होंगे, वो लोग हार गए होंगे। तीन पीढ़ियों तक केस लड़ रहे थे कोर्ट में। तो देखिए ये है कलयुग का लक्षण, अदालत में लड़ते रहो लड़ते रहो। तो ये सब हमारे पापों के फल, बीमार होना, गरीब होना, ऐसे कोई कष्ट होना, अपमानित होना, जितने भी दुख हैं समस्त, वो सब हमारे प्रारब्ध फल हैं, और अप्रारब्ध भी आने वाले हैं जो अभी हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आएंगे आने वाले जन्मों में। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो जा रहे हैं गोलोक वृंदावन, इसलिए प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों नष्ट हो गए आपके। तो यहां बतलाया हुआ है भक्ति से अप्रारब्ध का नाश। तो पाप दो प्रकार के, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। अब सर्वप्रथम रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं अप्रारब्ध फल का नाश कैसे होता, ये प्रमाण श्रीमद् भागवत से है। तो कोई श्लोक पढ़िएगा, कोई पढ़ेंगे, सुसमृद्धार्चि समृद्धार्चि पढ़िए, कृत्स्न मतलब कृष्ण नहीं, कृष्ण और कृत्स्न ये दो अलग शब्द हैं। हाँ, कृत्स्न मतलब समस्त। तो प्रभुपाद जी यहां अनुवाद बतला रहे हैं, हम केवल इस श्लोक को यहां लिख रहे हैं, क्योंकि अनुवाद तो दिया हुआ है ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने। तो जिस श्लोक का अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने दिया है उसी श्लोक को हम ऊपर यहां लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अभी आप ये अनुवाद को पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुत अच्छा, देखिए कितनी सुंदर उपमा है भगवान दे रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से है, 11वें स्कंद से। कोई बता सकते हैं कि श्री कृष्ण ने ये श्लोक किनसे कहा, उद्धव, इसलिए ये भाग जो है श्रीमद् भागवत का इसको क्या कहते हैं, उद्धव गीता कहते हैं। तो उपमा में, उपमा के कौन से अंश हैं बताइए, अनुवाद फिर से पढ़िए,
जो इसमें डाले गए असली ईंधन को जलाकर खाक बना सकते
हैं। तो भक्ति की तुलना किससे की गई? अग्नि से। और हमारे पाप ईंधन से। कौन से पाप? वास्तव में ये अप्रारब्ध पापों की का वर्णन हो रहा है, हालांकि यहाँ पे कहा नहीं गया स्पष्ट रूप से कि अप्रारब्ध है, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये अप्रारब्ध का उदाहरण है। तो जिस प्रकार से अग्नि में ईंधन डालने से ईंधन क्या होता है? भस्म हो जाता है। तो यहां बताते हैं यथा जिस तरह से अग्नि ही मतलब आग सुसमृद्ध अर्ची ही, अर्ची मतलब बताइए,
अग्नि
अग्नि ही अर्ची है, और समृद्ध सुसमृद्ध प्रज्वलित, जो प्रज्वलित अग्नि के भीतर करोति जब डाला जाता है किया जाता है एधांसी, एधांसी मतलब ईंधन, भस्म सा तो भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से तथा मत विषया भक्ति, मुझे विषय बनाकर मुझे उद्देश्य बनाकर जो मेरी भक्ति करेगा क्या होगा? उद्धव हे उद्धव एनामसी कृत्स्नशः, इनामसी मतलब पाप। जिस प्रकार से ईंधन नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। कितने कैसे नष्ट हो जाते हैं? कृत्स्नशः समस्त पूरे नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। तो कम से कम ये अग्नि और ईंधन का उदाहरण हम याद रख सकते हैं। और उसके बाद जो है ऋषि रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे भक्ति से प्रारब्ध का भी नाश होता है, न केवल अप्रारब्ध लेकिन प्रारब्ध भी। जो अभी प्रकट हो गया है वो क्या है? प्रारब्ध। जैसे वृक्ष जो है वो बड़ा हो गया है, स्थूल है, उसको काटना आसान नहीं है ना, लेकिन जब वही वृक्ष अगर पौधे रूप में जब था कई साल पहले तो उसको काटना कितना मुश्किल था? कम या ज्यादा?
कम।
तो जब ये प्रारब्ध फल हो जाता है उसका नाश करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है अप्रारब्ध के तुलना में। परंतु भक्ति न केवल सूक्ष्म अप्रकट अप्रारब्ध फल का नाश करती है, अभी जो प्रकट अवस्था में जो पाप का फल है प्रारब्ध फल उसका भी नाश करती है। मतलब भक्ति कितनी शक्तिशाली है इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी। तो और कोई इस श्लोक को पढ़ेंगे? ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध से है और इसमें माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से कह रही है ये श्लोक। कोई पढ़ेंगे इस श्लोक को? नहीं, श्लोक पढ़िए। यहाँ श्लोक हमें अभी अनुवाद पढ़िए।
जो आदि नौ प्रकार की भक्ति होती है, जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, और इस तरह नौ प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडालपुरी में क्यों ना हुआ हो।
बहुत अच्छा, आपने अनुवाद समझ लिया? अच्छा देखिए, अच्छा फिर से अनुवाद पढ़िए, थोड़े वक्त लिख रहे थे इसलिए आप सुनिए अनुवाद को।
हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि नौ प्रकार की भक्ति होती है, जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, और इस तरह नौ प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडालपुर में ही क्यों न हुआ।
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक है। बढ़िया से बढ़िया प्रमाण रूप गोस्वामी ने ढूंढ निकाले हैं शास्त्रों में से। यन नाम धेय, यन मतलब जो, जिनका, जिनका वास्तव, जिनका मतलब भगवान का। नाम धेय जो नाम ग्रहण करता है, नाम लेता है। आगे श्रवण अनुकीर्तनाद, फिर उनके दिव्य चरित्र के बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करते रहता है। अनु, फिर से शब्द यहां अनु आया, जो भक्ति भाव से निरंतर भगवान के बारे में कीर्तन करते रहता है। यत, जिनका मतलब भगवान का। प्रह्वणाद, प्रह्वणाद मतलब नमस्कार करना या दंडवत करना। फिर से यत, उनका। स्मरण आदि अपि क्वचित, स्मरणाद, स्मरणाद मतलब स्मरण से। अपि क्वचित, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी ऐसे सेवा करे भगवान की, उनका नाम का श्रवण करे, नाम का कीर्तन करे, भगवान को दंडवत प्रणाम करे, भगवान के बारे में स्मरण करे, तो क्या होता है? अगर वो स्वादो, स्वाद अपि, हालांकि वो स्वाद है, स्वाद मतलब चंडाल, चंडाल कौन होता है? कुत्ते का मांस खाने वाला, मतलब सबसे निम्न श्रेणी का व्यक्ति माना जाता है, जिसका जन्म बहुत नीचा है। ऐसा जन्म जो चंडाल का जन्म जो होता है ना, वो बहुत नीचा माना जाता है। तो स्वाद, शिव मतलब कुत्ता, आद मतलब खाने वाला, कभी कभी इसको स्वपच भी कहते हैं। ये शब्द आपने कहा, कौन से भगवद गीता के श्लोक में सुना है बताइए? हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शना। श्वपाके, श्वपाक, पाक मतलब खाना, श्व मतलब कुत्ता, जो कुत्ते के मांस को खाता है वो श्वपच या श्वपाक, और यहां स्वाद। तो स्वाद अपि, हालांकि कोई स्वाद है, कोई चांडाल है, परंतु अगर वो ये सब करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण नमस्कार आदि भगवान के प्रति करता है, सद्यः तुरंत सवनाय कल्पते, कल्पते मतलब हो जाना, क्या हो जाता है? सवनाय, वो यज्ञ आदि करने के लिए योग्य हो जाता है। वैसे साधारणतः यज्ञ करने के लिए कौन योग्य होते हैं? ब्राह्मण लोग होते हैं। आपने कहीं देखा है शास्त्रों में कि कोई चंडाल बैठा है यज्ञ करने के लिए? नहीं, ऐसे वैदिक संस्कृति में नहीं है कोई अनुमति। परंतु अगर कोई चंडाल ऐसे वैष्णव बन जाए, तो फिर वो तुरंत तत्क्षण वो उस योग्य हो जाएगा। न केवल उसे उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जैसा कि एक याज्ञिक ब्राह्मण को दिया जाता है, परंतु उसका अधिकार है कि वो यज्ञ करे। हमारे इस्कॉन संस्था में इसका प्रत्यक्ष हम अनुभव करते हैं कि यहां इस संस्था में कोई जाति देश जन्म का भेदभाव नहीं है। आप कोई भी भाषा बोल रहे हो, कोई भी प्रांत के क्यों न हो, कोई भी किसी भी जाति में आपका जन्म न हुआ हो, चाहे वो जन्म समाज की दृष्टि से ऊंचा हो नीचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति है, राजनेता है, वो आए थे हमारे मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में, और बोल रहे थे कि आपके संस्था में मैंने बहुत अच्छे गुण देखे हैं, लेकिन सबसे अच्छा गुण जो मुझे अच्छा लगा है वो ये है कि आपके पूजा करने वाले ऐसे भी लोग हैं जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है। ये हमें सबसे अच्छी बात लगी, और हमने समझा कि वास्तव में आपके संस्था में ये विद्या विनय संपन्न श्लोक जो है वो अभी वास्तव में इसका आचरण हो रहा है। कि आप लोग ही हैं जो ऐसा करते हैं, नहीं तो जितने भी और सब हैं संस्था वगैरह हैं वो अपने अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आप लोग मात्र हैं जो ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। और वास्तव में हम देखते हैं अगर किसी व्यक्ति ने इस कृष्ण भावनामृत के पथ को स्वीकार किया है बड़े हृदय से, अच्छी तरह से वो साधना करता है, सेवा करता है, और उसने दीक्षा ले ली, फिर ब्राह्मण दीक्षा भी ले ली, फिर वो भगवान के श्रृंगार पूजा आदि करने के लिए योग्य हो जाता है, सिंहासन में जाता है, चढ़ता है, वो सेवा करता है, आरती उतारता है भगवान की, तो इस्कॉन संस्था में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से चंडाल भी अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाता है। कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्, तो जब चांडाल का ये भाग्य होगा भक्ति करने से, तो उन लोगों की बात तो दूर है जो कि साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं भक्ति करने से। तो जो बहुत ही उन्नत हैं, जो बहुत ही पुण्यवान हैं, ऐसे लोगों की बात तो दूर ही है, ऐसा माता देवहूति कपिल देव से कहती हैं। माता देवहूति का और एक श्लोक है, को जानते हैं, इसी प्रकार का श्लोक है, साथ साथ में कहती है, अहो बतश्व पचो तु गर्यान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते शुशु जुहुबु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। इसका मतलब क्या है कि माता देवहूति कहती हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण मात्र करता है, हमें समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति हालांकि स्वपच भी क्यों न हो, स्वपच चांडाल भी क्यों न हो, वो हमारे लिए बड़ा पूजनीय है। और हमें जान लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति ने सारे वैदिक यज्ञों को किया है, सारे तीर्थ स्थानों में वो भ्रमण कर चुका है, और वहां जाकर नदियों में कुंडों में स्नान कर चुका है, उसने वेदों का पाठ कर लिया है, उसने तपस्याएं हर प्रकार की कर ली हैं, तो हर दृष्टि से वो योग्य है, उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भक्ति मार्ग में कि यहां कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता। और रूप गोस्वामी इस श्लोक को यहां यह नामधेय इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रमाण बतलाने के लिए कि आदमी का प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। और चंडाल के लिए प्रारब्ध क्या है बताइए, अब चंडाल है तो उसका प्रारब्ध क्या है? सर्वप्रथम उसका प्रारब्ध ये है कि उसको ऐसे कुल में जन्म मिला है, एक शरीर मिला, एक अमुक माता पिता से जब जन्म मिलता है तो माता पिता से हमें शरीर मिलता है ना, तो वो जन्म वो शरीर हमारा प्रारब्ध है, ठीक है, चाहे वो शरीर बहुत सुंदर क्यों ना हो, चाहे कोई कुरूप क्यों ना हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, लंबा हो चौड़ा हो, जो भी कुछ हो, वो हमारा प्रारब्ध है। तो उस प्रकार का शरीर मिला है तो चांडाल का प्रारब्ध है कि उसे एक चांडाल का शरीर मिला है, चांडाल का जन्म मिला है, और ऐसे जन्म मिलने के फलस्वरूप उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का है। कैसा है व्यवहार? कुत्ते का मांस खाता है और उसके जैसे और कोई काम कार्य करता है, तो ये उसकी अयोग्यता है। अयोग्यता क्या है, जन्म है या कार्य है?
कार्य।
जन्म से वो अयोग्य नहीं है, अपने कार्यों से बन जाता है, क्योंकि उसे ऐसा जन्म मिला है और ऐसा वातावरण मिला है, इसलिए उसके कार्य भी वैसे हो जाते हैं। अब जब वही व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसका जन्म तो नष्ट नहीं हो सकता, शरीर तो नष्ट नहीं हो सकता, शरीर तो रहेगा, तो क्या बदल सकता है? व्यवहार बदल सकता है, उसके कार्य बदल सकते हैं, उसकी आदतें बदल सकती हैं, उसके सोचने का ढंग बदल सकता है, और इस दृष्टि से उसका प्रारब्ध बदल जाता है। क्योंकि उसने अपना व्यवहार सुधार लिया, अपना जीवन पवित्र कर लिया, हालांकि उसका जन्म अच्छा नहीं है भौतिक दृष्टि से, फिर भी सवनाय कल्पते, फिर भी वो यज्ञ के योग्य हो जाता है। तो अपने नीच जन्म के हेतु जो उसको बुरा व्यवहार प्राप्त हुआ, वो प्रारब्ध है उसका, उसने वो नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये उदाहरण है इस बात के लिए कि भक्ति प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट करती है। तो इस बात का विश्लेषण यहां प्रभुपाद जी ने किया हुआ है। इसके बारे में कोई प्रश्न है किसी के? प्रश्न ये है कि कई बार आप वो रिक्शा और लॉरी के पीछे पीछे अलग अलग सब चीजें लिखी हुई होती हैं, बुरी नजर वाले तेरा क्या मुंह काला, है ना, ऐसा सब लिखा होता है ना। तो ऐसे ही कभी कभी लिखा होता है माता पिता के पुण्य आशीर्वाद ऐसे, तो क्या ये सही है क्या? वैसे देखिए ये पुण्य के क्षेत्र में आता है, भक्ति के क्षेत्र में नहीं आता। माता पिता की सेवा करना, अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, हाँ पाप नहीं कर रहे हो भले ज्यादा, परंतु साधारण माता पिता हैं इस जगत के जो ज्यादा पाप नहीं कर रहे हैं, और बच्चा माता पिता की सेवा करता है, तो यह भी एक पुण्य माना जाता है। अगर कोई माता पिता के बच्चे ऐसे हैं जो उनकी सेवा नहीं करते बल्कि उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि यह भी एक पाप का फल है, पुराने जन्म का कोई। आजकल तो ये प्राय हो रहा है, क्योंकि कलयुग में जन्म ऐसे ही जीव ले रहे हैं जो पापी जीव हैं। हमने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए तो हमें ऐसा कलयुग में जन्म मिला है, इसलिए बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा। एक हंसी की बात है कि एक राज्य में भारत में एक दिन हम अखबार पढ़ रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो कोई एक राजनीतिक दल में कोई समस्या हो गई, आपस में उनको कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, और बाप बेटे में झगड़ा हो गया और दो अलग पार्टियां हो गई, एक पार्टी दो पार्टी बन गए। ये तो साधारण बात है भौतिक जगत में, है ना। तो फिर वो अखबार में हेडलाइन आ गया था कि ये जो राजनेता है एक पत्रकार सम्मेलन बुला के अपने लड़के को कह रहा है तुम राम की तरह बनो तुम राम की तरह बनो और पिता के आदेश का पालन करो। लेकिन वो भले लड़का राम की तरह कैसे बनेगा जब आप दशरथ की तरह नहीं बनोगे, तो पहले आपको देखना चाहिए, फिर आप वो प्रतीक्षा अपेक्षा करो कि लड़का जो है राम की तरह बनेगा। केवल लड़का राम की तरह होना चाहिए, हम जो चाहें वो करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे लोग बस अपेक्षा करने में सब लोग आगे हैं, लेकिन अपना कर्तव्य क्या होता है वो भी देखना चाहिए। ये सज्जन नहीं देख रहे थे कि कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो माता पिता की सेवा करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, साधारण पुण्य के क्षेत्र में, भौतिक स्तर पे। और पुण्य करने से क्या मिलता है, क्या मिलता है? जिस प्रकार से पाप करने से क्लेश मिलता है ना, दुख मिलता है, तो पाप करने पुण्य करने से क्या मिलता है? सुख मिलता है। किस प्रकार का सुख? भौतिक सुख मिलता है, ये संसार का सुख मिलता है। भौतिक पुण्य कार्य करने से क्या हम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। पुण्य हमें भौतिक जगत का सुख प्रदान करेगा और पाप हमें भौतिक जगत का क्लेश प्रदान करेगा। अगर हमें भगवान के धाम में जाना है तो हमें न पाप से संबंध है न पुण्य से, हमें किससे संबंध है? भक्ति से संबंध है। ठीक है, पाप और पुण्य दोनों ही भौतिक हैं। ठीक है,
अगर हम कहते हैं कि भक्ति से हमारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है,
तो मतलब जो आपके, अगर आपका जन्म भी नीचा हुआ होगा, तथा कथित नीचा जन्म हुआ होगा, तो उस नीचे जन्म के फलस्वरूप जो अयोग्यता आपको प्राप्त हुई है वो अयोग्यता नष्ट हो जाएगी। ये मतलब है प्रारब्ध नष्ट होने का।
तो ऐसे देखा जाता है कि जो लोग निम्न कुल से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, वो लोग स्वीकारते हैं हरे कृष्णा को और बाद में आते भी हैं मूवमेंट में, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सालों तक रहने के बावजूद भी उस तरफ से उनको हमेशा दुख मिलता ही है। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी का मेरे एक मित्र है, मुस्लिम परिवार से है, पहले आता था मंदिर में जप करता था, लेकिन बाद में मंदिर से चले गया, उसके माता पिता ने उसे जबरदस्ती ले गया, तो फिर बाद में वो चले गया बाहर। एक बार उसका ई मेल आया कि मैं तो जब माला भी तो नहीं कर रहा, लेकिन चैंटिंग और मैकिंग ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद कभी उसका ई मेल नहीं आया या कुछ संपर्क नहीं हुआ, तो क्या
उसे उसका प्रारब्ध पूरी तरह से नष्ट हो जाता है या उसे मिलता है तो दुख आते हैं उसके लिए? हरिदास ठाकुर का उदाहरण अलग है, वो अलग श्रेणी में है। हरिदास ठाकुर तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनकी तुलना हम सबसे नहीं की जा सकती। तो दुनिया में जो साधारण व्यक्ति किसी न किसी भाग्य से भक्त बन जाता है, वो शनि शनि अपने पापों को नष्ट करके भक्ति में प्रगति करता है। परंतु भक्ति में अपरिपक्व होने की वजह से, कच्चा होने की वजह से कभी कभी वो पथभ्रष्ट हो भी सकता है, कभी उसका मन डावाडोल हो भी सकता है, क्योंकि अभी तक कच्चा है। जब पक्का हो जाएगा तब हिलेगा नहीं वो भक्ति से, तब चाहे कोई भी उसे रोकने का प्रयास क्यों न करे वो भक्ति छोड़ेगा नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर, वो मुसलमान राजा ने बहुत धमकी दी, लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कृष्ण नाम न लूं, और कृष्ण नाम लेने से आप मेरी हत्या करेंगे, तो मैं कहता हूं कि कृष्णा मुझ में इतना समा गया है कि आप मेरे शरीर का नाश करोगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो हर एक टुकड़ा मेरा शरीर का जो है वो कृष्ण नाम कहेगा। तो ये दृढ़ता जो है, ये विश्वास हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों में ही हो सकती है। परंतु हमारे लिए ये प्रेरणात्मक है, प्रेरणा की बात है कि हमें हरिदास ठाकुर के उदाहरण से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किसी भी अवस्था में भक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। तो जब भक्त इतना पक्का नहीं होता, उसकी भक्ति इतनी सुदृढ़ नहीं होती है, तो संभव है कि कभी कभी वो पथ भ्रष्ट हो जाए या अपने साधना में अभ्यास में थोड़ा कमजोर हो जाए, हो सकता है। लेकिन वो कभी भक्ति को भूलेगा नहीं और एक न एक दिन लौट के आएगा, अपनी इच्छा से आएगा या माया की ठोकर खाकर आएगा, लेकिन आएगा। भक्तों के जीवन में क्लेश जो आते हैं वो पाप नहीं है। जो शरणागत भक्त हैं उनके दुख डायरेक्ट भगवान के नियंत्रण में है,
उनको प्रारब्ध में नहीं गिना चाहिए।
नहीं, वो प्रारब्ध नहीं कहलाता। हालांकि भक्त नम्र होता है, वो मानेगा कि ये मेरा प्रारब्ध है, लेकिन वास्तव में प्रारब्ध नहीं है। जैसे पांडव, पांडवों को कितना कष्ट हुआ, हुआ ना? पांडवों के कष्ट के सामने हमारा क्या है कष्ट? हमारा किसी ने घर से हमें बाहर निकाल दिया है, राज्य से बाहर निकाल दिया, सारा धन हमारा चोरी कर लिया, उतना तो नहीं हुआ हमारे साथ। हमारे पत्नी को उस तरह से अपमानित किया गया है जैसे पांडवों के पत्नी को हुआ, नहीं। हमें कितने बार लोगों ने मार डालने का प्रयास किया आज तक? शायद एक भी नहीं। ये सब पांडवों के साथ हुआ। और प्रहलाद के साथ क्या हुआ? इसी प्रकार के कितनी बड़ी बड़ी विकट समस्याएं आई, कितना अत्याचार हुआ उनके विरुद्ध। तो उनके विपत्तियों के सामने हमारी विपत्तियां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि उनके जीवन में जो ऐसे समस्याएं आई वो उनके प्रारब्ध के फल स्वरूप नहीं आई, वो तो भगवान ने प्रत्यक्ष उनके जीवन में ऐसे किया ताकि हम जान लें कि पांडव कितने महान हैं, प्रहलाद कितने महान हैं, उनका गुणगान करने के लिए, उनके गौरव करने के लिए भगवान ने उनको ऐसे परिस्थिति में डाला। दूसरी बात, हम सबको सिखलाने के लिए कि देखो इनके जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं आईं, फिर भी उन्होंने मेरे चरण कमलों को त्यागा नहीं, तो जब आपके जीवन में समस्याएं आएंगी उनके सामने आपकी समस्या कुछ भी नहीं है, तो आपको भी नहीं त्यागना चाहिए मेरी भक्ति। हम सबको सिखलाने के लिए ठीक है। हाँ, तो क्लेश जैसे प्रहलाद के जीवन में क्लेश आया, वो पाप से उत्पन्न नहीं होने वाला क्लेश था, वो डायरेक्ट भगवान ने दिए हुए क्लेश थे। लेकिन ऐसे क्लेशों को भक्त क्लेश नहीं मानता, वो भगवान की कृपा मानता है। हालांकि शुद्ध भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन वो दुख उनके प्रारब्ध के फल स्वरूप नहीं आते। वो उन दुखों में और साधारण भौतिक जीव के दुखों में अंतर होता है। साधारण भौतिक जीव का जो दुख है, क्लेश, वो उसके पापों के फल से आता है। जब शुद्ध भक्त होता है, उसकी जो जीवन में क्लेश आते हैं वो कृष्ण की योजना से आते हैं। ब्रह्मा जी का कौन सा श्लोक है, सुंदर श्लोक भागवत का इस संदर्भ में बताइए? वो तो ब्रह्म संहिता का है। हाँ, वो भी अच्छा श्लोक है, इससे साधित होता है कि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। आपके जितने भी कर्म हैं, प्रारब्ध हो और प्रारब्ध हो, भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बोलिए श्लोक किसको? बहुत अच्छा। तो इसका मतलब क्या है, अर्थ बताइए। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। तो अगर जो भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो क्या है? विपाकम, आत्मकृतम विपाकम। विपाक मतलब जो गलत काम किए हुए हैं, पाप। आत्मकृतम, मैंने किए हुए पापों का फल ही मुझे मिल रहा है, और कोई दोषी नहीं है। जो भी जीवन में दुख आ रहे हैं वो आत्मकृतम विपाकम है, मेरे किए हुए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, कोई और जिम्मेदार नहीं है मेरे जीवन के दुख के लिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, केवल आपकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहूंगा। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमान है, अनुकंपा मतलब कृपा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसी भावना रखता है कि उसके जीवन में जो भी क्लेश आया है वो उसके किए हुए पापों के फल हैं, और ऐसे इन पापों के फल को भुगतते हुए वो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है, और साथ साथ ऐसा नहीं कि केवल प्रतीक्षा करता बैठे रहता है, नहीं, हृदवाग वपुर विदधन नमस्ते, भगवान का भजन, भगवान की सेवा करता है, अनुकूल ये न कृष्णानुशीलनम, वो चलते रहता है उसका, हृद वाक वपु, हृद मतलब हृदय, वाक मतलब वाणी, वपु मतलब शरीर। तो अपने मन से, अपने तन से, अपने वाणी से विदधन नमस्ते, वो भगवान को नमस्कार करता है और उनकी सेवा करता है। जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय भाग, ऐसा व्यक्ति आपके धाम को प्राप्त करने का अधिकारी व्यक्ति बन जाता है। उसको वीजा पासपोर्ट मिल जाता है आपके धाम में जाने के लिए। तो भक्त हमेशा सोचता है कि ये तो मेरे ही पाप है, परंतु सिद्धांत हमें जानना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पाप, उनके जो दुख हैं, वो पापों के फलस्वरूप उनको नहीं मिलते, बल्कि कृष्ण के डायरेक्ट मिलते हैं, शुद्धिकरण। अलग अलग कारणों से देते हैं, हो सकता है दूसरों को उदाहरण देने के लिए, हो सकता है कि थोड़ा क्लेश, थोड़ा सा लेश मात्र कुछ इधर उधर रह गया हो, थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत साफ कर लेना है। हो सकता है उनकी उनकी भक्ति की तीव्रता को और बढ़ाने के लिए, ताकि जब भक्त कष्ट में आता है तो द्रौपदी ने जैसे किया, क्या करता है, भगवान को पुकारता है, निस्सहाय हो जाता है भक्त ऐसे अवस्था में, तो उसकी भक्ति और तीव्र हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग कारणों से भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भी ऐसे परिस्थितियों में कभी कभी डालते हैं। हाँ, ये भी एक कारण है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब प्रभुपाद को बीमारी हुआ करती थी, तो एक बार एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आपको आपके आपको कैसे कष्ट हो रहा है, आपने तो कोई पाप किए नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा, मेरे पाप नहीं है, आप लोगों के पाप है जो हमको लगे हैं, जो शिष्यों के पाप गुरु को लगते हैं। अच्छा, मैंने पूछा था। अच्छा, तो ये बात है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको कभी पापों का फल नहीं, पाप तो कब के क्षीण हो गए उनके, अभी वो भक्ति में किस स्तर में लगे हुए हैं, तो भगवान डायरेक्ट उनको देते हैं कई कारणों से। ठीक है, तो इस बहुत अच्छा, वो कहते हैं कि और दुख देते जाइए, विपद संतु ताह शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, विपद संतु, विपद आने दीजिए, और बोला आने दीजिए, आने दीजिए। विपद हमारे जीवन में आते हैं तो हम क्या कहते हैं भगवान से, जाने दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन कुंती महारानी कहती हैं, आने दीजिए, आने दीजिए, निमंत्रण दे रही है। क्यों? क्योंकि जब विपत्तियां हमारे जीवन में आएंगी तो हम किनका स्मरण करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे। ये भक्त और अभक्त में पहचान है, क्योंकि जब भक्त होते हैं कठिनाई के समय भगवान को याद करते हैं, और जब अभक्त होता है उसके जीवन में कठिनाई आती है तो और वो कुछ दूसरा ही कुछ स्मरण करता है। क्या स्मरण करता है? चाहे वो सोचेगा कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, या कोई सोचता है चलो मैं शराब पी लूं, मेरा दुख है उसको खत्म कर लूं, कोई आत्महत्या कर देता है, आत्महत्या करने से सारे दुख मेरे खत्म हो जाएंगे। तो जो भौतिक लोग होते हैं दुख और कष्ट के समय वो इन चीजों का आश्रय लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं दुख के समय वो बहुत ही तीव्रता से भगवान का आश्रय लेते हैं। ये अंतर है भक्त और अभक्त में।
तो आत्महत्या करने के बाद व्यक्ति को क्या, कौन सी लर्निंग मिलती
है उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि कौन सी, क्योंकि सोचने से भी हमें किसके बारे में सोचना पड़ेगा, भूत के बारे में, क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसे भूत योनि प्राप्त हो जाती है।
तो तुम ये भूत भक्तों को परेशान करते हैं
जो भक्त अपने माला करते नहीं है उनको परेशान करते हैं। इसलिए अगर हम हमारी माला ठीक से करेंगे तो कभी भूत परेशान नहीं करेंगे, है ना। हाँ माता जी बोले। मिश्रण, जो साधारण भक्त होते हैं उनके जीवन में जो कष्ट आते हैं उनको क्या समझना चाहिए, पाप है या कृष्ण की योजना है, दोनों दोनों का मिश्रण है। परंतु एक बार जब कोई व्यक्ति कह लेता है तव अस्मि तवास्मीति च याचते, श्री रामचंद्र कहते हैं रामायण में, जिस दिन से कोई व्यक्ति कहता है तव अस्मि इति, इस प्रकार से कोई व्यक्ति कहता है भगवान के सामने कि आज से मैं आपका हो गया हूं, तब भगवान फिर संभाल लेते हैं। और अगर हमारे प्रारब्ध खत्म नहीं भी हुए हों लेकिन भगवान अपना फॉर्मूला लगाकर इनका नाश करेंगे। साधारण रूप से हमारे प्रारब्धों का फल हमें मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान फिर उसमें अपनी इच्छा से आएंगे और फिर उसका एडजस्टमेंट जैसे भी है वो करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको प्रारब्ध के अनुसार साधारण उसके कर्मों के अनुसार उसको ऐसा फल मिलना चाहिए था कि उसको तलवार से गर्दन कटनी वाली थी, लेकिन जब वो भक्त बन जाता है और भक्ति करना शुरू करता है, भले वो शुद्ध भक्त अभी तक न बना हुआ हो, उसको हो सकता है रसोई घर में कुछ सब्जी काटते समय छुरी से छोटा सा घाव हो गया, कर्म का बीज अभी तक नष्ट नहीं हुआ है परंतु वो कर्म का नाश हो रहा है। तो भगवान ने ऐसे कर दिया कि जो इतना बड़ा उसको फल मिलने वाला था उसको एक छोटे से फल में परिवर्तित करके छुट्टी करा दी। तो हमें जानना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई कष्ट आता है तो इसे 100 गुना ज्यादा आना चाहिए था प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन अभी ब्रह्मांड भगवान ने छुट्टी करा दी हमारी, थोड़े में ही हमको मामला निपटा लिया। इतना मिलना चाहिए था, भगवान ने केवल इतना दिला दिया। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए।
एक गुरु जी कह रहे थे जेल ब्रीचिंग में कि कैदियों को एड्रेस करते हैं कि आप लोग तो पकड़े गए, अभी मैं भी जेल में हूँ, मुझे भी यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे बिठा दिया गया है, आप भी जेल के अंदर बंद है, मैं भी जेल के अंदर बंद हूँ, आप भी कैदी है, मैं भी कैदी हूँ, तो सिर्फ फर्क इतना है कि आप लोग पकड़ा गए हैं और मैं पकड़ा नहीं गया। एक्चुअली मैंने भी मेरे कुछ भूत कर्म ऐसे कर्म किए थे जिससे मुझे जेल हो सकती थी लेकिन मुझे नहीं हुई, लेकिन आज मुझे हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं भगवान को, भगवान की कथा आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यही फर्क है। जब हम भगवान को सरेंडर होते हैं तो हमारे पाप कैसे भगवान एडजस्ट कर देते, सजा तो हुई मुझे लेकिन आज मैं आपके सामने कथा कर रहा हूँ।
सही है, भगवान भक्तों के जीवन में जो भी होता है वो अपने हाथों में ले लेते हैं, और बल्कि जो अभक्त होते हैं उनका जीवन वो प्रकृति देवी माया देवी से कहते हैं उनको आप संभालो, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के शरण में आने लगता है तो भगवान माया देवी को कहते हैं अभी मेरे, अभी छोड़ो तुम, अभी छुओ नहीं इसको, ये मैं संभालूंगा इसको। फिर कर्मों का फल देंगे भगवान, लेकिन अब डायरेक्ट देंगे, अपने दृष्टि से अपने तरह से देंगे, अब दुर्गा देवी नहीं देंगी, भगवान देंगे अब डायरेक्ट। तो ये है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्। जितना हम शरण में जाते हैं भगवान का उतना ही भगवान आगे आते हैं, उतना ही भगवान अपने जीवन को, अपने जीव को अपने नियंत्रण में लेंगे, अपने डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अपने कंट्रोल में लेंगे। ठीक है।
हाँ।
तो वही सवाल, वही बात हो गई, पांडवों को और प्रहलाद को क्यों कष्ट मिला था? ऐसे तो लीला है। भीष्मदेव की बात कौन जानते हैं? भीष्मदेव पिछले जन्म में कौन थे? महाभारत किसने पढ़ा है? महाभारत पढ़ा है ना? हाँ माता जी बताइए। नहीं, भीष्मदेव बने कैसे? वो भीष्मदेव का जन्म कैसे हुआ? क्या पहले कौन थे वो? वसु। वसु मतलब कौन? देवता की श्रेणी है। तरह तरह के देवता होते हैं, जैसे आदित्य, द्वादश आदित्य, 12 आदित्य हैं, जैसे इंद्र हैं, सूर्य देव हैं, ये सब आदित्य माने जाते हैं। और फिर रुद्र, रुद्र देव भी होते हैं तरह तरह के, और वसु। तो वसु थे, और वसु कितने होते हैं? अष्ट, 8 वसु। तो 8 वसु में से ये एक थे, जिनका नाम था, क्या था नाम? महाभारत बाद द्यु, द्यु 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 नाम था। और ये सारे भाई अपने साथियों को लेकर कहां गए थे? वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए थे। बहुत अच्छा। और क्या किया उन्होंने वहां पे?
गाय, जो गाय थी वो कुछ कुछ भी जो मतलब काम धोनी।
हाँ,
तो जो दीव थे, जो लीडर थे, उनकी पत्नी को चाहिए थी। ठीक है, तो ले दूंगा।
बहुत अच्छा। तो ये महाभारत की कहानी है। तो इस प्रकार से उनको श्राप मिल गया कि अभी आपको पृथ्वीलोक पर जन्म लेना होगा। तो भीष्म बने। वैसे तो भगवान के भक्त हैं, और भीष्मदेव भी शुद्ध भक्त हैं, दास्य रस में शुद्ध भक्त माने जाते हैं भीष्मदेव। तो ये भी भगवान अपने नियंत्रण में लेते हैं सारे भक्तों का जीवन। इसलिए भीष्मदेव के जीवन में भी जो विपत्तियां आई वो भी स्वयं भगवान के निर्देशन में हुए। ठीक है।